ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಂ. कई मनु मनवंतरों की बातें चली. ये मार्कंडेय पुराण है तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, इसलिए इस नाम इस पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण रखा. कई कभी कोई प्रसंग चलता है तो क्रौष्ट के मुनि बोले कि हमें आप सूर्य भगवान के विषय में बताओ. तो मार्कंडेय जी कहने लगे ये मनु है जो कई प्रकार के मैंने बताए थे, उन मनुओं में एक वैवस्वत मनु हुआ है, अर्थात सूर्य का पुत्र मनु. तो सूर्य के 10 पुत्र हुए थे. माने वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए थे. सूर्य का पुत्र मनु, उस मनु के 10 पुत्र हुए थे कई. तो सबसे पहले बताते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी के हाथ के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा हुआ. ब्रह्मा जी के हाथ के बाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति की पत्नी का जन्म हुआ और उनसे फिर एक अदिति नाम की सुंदरी कन्या पैदा हुई. उसने सूर्य को, भगवान सूर्य को जन्म दिया. कश्यप अदिति के यहां कैसे वे उत्पन्न हुए और सूर्य भगवान का कैसा प्रभाव है, तो मार्कंडेय जी ने कहा कि देखो, शुरू शुरू में ये जितना संसार दिखता है इसमें पहले प्रकाश नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था. उस समय सबके कारणभूत एक अविनाशी अंडे का प्राकट्य हुआ. उस अंडे के अंदर ब्रह्मा जी विराजमान थे. ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ओम ऐसा महान शब्द हुआ है, ओम. इस ओम से पहले भूर्भुवः स्वः, ये तीन और चीजें पैदा हुई. फिर मह जल तप और सत्य, ये सात लोक हुए. भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक. ऐसे तो एक एक से एक एक के प्रभाव से उत्पत्ति हुई. तो ये सूर्य के ही रूप थे. ये सात लोग क्या है, सूर्य के स्वरूप है. ये एक एक से एक बढ़कर, यूं बढ़कर, यूं बढ़कर. ये जो ओम है ये भगवान का वाचक है. ओम ये सृष्टि का आदि है, यही सृष्टि का अंत है. ये सूक्ष्म है ओम और निर्विकार है. इधर ब्रह्मा जी के चार मुख से जो पूर्व की ओर मुख रहता है उससे ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई. दक्षिण का जो मुख होता है उससे यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई. पश्चिम का जो मुख होता है उससे सामवेद की उत्पत्ति हुई और उत्तर का जो मुख होता है उससे अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई. ऐसे चार वेद चारों मुखों से प्रकट हुए। ऋग्वेद है, इसमें रजोगुण की मुख्यता है। यजुर्वेद में सत्वगुण की मुख्यता है। सामवेद में तमोगुण की और अथर्ववेद में तमोगुण और सत्वगुण दोनों की है। परंतु ये सब ओंकार से मिले हुए हैं, इसलिए वेद की कोई भी सूक्ति बोली जाएगी, ऋचा बोली जाएगी, मंत्र बोला जाएगा तो उससे पहले ओम लगाना ही पड़ेगा। ओम के अंदर बोले बिना वो सिद्ध नहीं होता। और वेदों के जो कर्म है वो उनके अपने अपने समय होते हैं। ऋग्वेद को, ऋग्वेद के अंदर जो शांति करने वाले कर्म है वो प्रातःकाल करने चाहिए। यजुर्वेद के जो पौष्टिक कर्म है वो मध्यान्ह काल में करने चाहिए। सामवेद के जो कर्म है वो अपराह्न काल में 4-5 बजे से। और पितर आदियों का जो काम है ये सामवेद के द्वारा इसमें बताए जाते हैं। तो सूर्य भगवान इन सब कर्मों को करने की शक्ति देते हैं। एक बार ऐसा समय हुआ कि जब ये सूर्य भगवान प्रकट हुए तो इतने तेज प्रकट हुए कि सारा जल सूखने लग गया। तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की और आराधना में उन्होंने प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, बड़े बड़े योगी जन आप तक पहुंच नहीं सकते, आपका ध्यान तो करते हैं पर वे आप तक पहुंच नहीं सकते, ऐसा आपका विलक्षण तेज है, आपके द्वारा वेदोक्त कर्म किए जाते हैं, आप ही के कारण से, आप सबके कारण हो और आपके कारण से सब ये विद्यमान है, सब देवताओं से भी आप परे हो, आपकी शक्ति से मैं संसार को बनाता हूं, पालता हूं और आप ही की शक्ति से इस संसार का संहार होता है। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जो इतना तेज है इसको आप समेटो, प्राणी लोग आपके तेज को सहन नहीं कर सकेंगे। तो फिर सूर्य भगवान ने अपना तेज खींच लिया और थोड़ा तेज दिया। इधर ब्रह्मा जी ने फिर वर्ण आश्रम के अनुसार सृष्टि का विस्तार किया, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, पृथ्वी बनाई, सर्पों के लिए अलग स्थान, देवताओं के लिए अलग, ऐसे ऐसे सब बना दिए। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप जी और कश्यप जी के 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियों में ये 13 की 13 दक्ष की बेटियां थी। इनसे सारा ये संसार भर गया। इधर देवता भी इन्हीं से ही पैदा हुए, कश्यप जी से तो दैत्य भी इन्हीं से ही पैदा हुए, असुर भी इनसे ही पैदा हुए, दानव भी इनसे पैदा हुए, सारी सृष्टि का प्रत्येक प्राणी कश्यप जी के 13 पत्नियों से पैदा हुए। इनमें देवताओं का और असुरों का ये तो बराबर संघर्ष चलता था। तो एक बार इतना जबरदस्त ये आपस में संग्राम हुआ, युद्ध हुआ कि देवता लोग हार गए और दैत्य लोग जीत गए। तब अदिति को बड़ा दुख हुआ, अपने बेटे हार गए तो उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान की आराधना करके उनसे कहा कि महाराज आपका कितना दिव्य तेज है, कैसी सुंदर आपकी आभा है कि उस आभा से आभा से प्रकट होते ही संपूर्ण त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। फिर वो आभा ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों सभी प्राणियों को सभी प्राणियों के जीवन का संचार करती है। यदि आप न हो तो जल न बरसे, यदि आप न हो तो अन्न पैदा न हो, धन धान्य की वृद्धि नहीं हो, आप न हो तो सर्दी के द्वारा प्राणियों की दुर्दशा हो जाए, यदि आप उचित गर्मी न दें तो सभी प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाए। इस प्रकार से खूब उनकी स्तुति करी। उस स्तुति के बाद अदिति चुप हो गई। चुप होने पर उनके सामने एक तेज प्रकट हुआ। अब अदिति की आंखें चंदिया गई हूं, अपने नेत्र शक्ति से न जाने कितना गुना वो तेज था, तो देखती रह गई बिचारी। कुछ समझ में नहीं आई, कहा कि हे महाराज, आप सूर्य भगवान हो क्या? यदि आप सूर्य भगवान हो तो बोल दीजिए, क्योंकि ऐसा तेज तो सूर्य का ही होता है, पर मैंने दर्शन आपके कभी किए नहीं और अब मैं कर सकती नहीं हूं, तो आपके समान संसार में कोई तेजस्वी नहीं है। आप इतनी शक्ति दो कि मैं आपके तेज का दर्शन कर सकूं। आपके समान संसार में किसी की गति नहीं है। ये ब्राह्मण जो इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, ये आप ही की शक्ति से यज्ञ का बल इनमें आता है। सारे विश्व की आप रक्षा करते हैं और इस विश्व के अंदर जितनी बुराइयां उन सबको आप जला करके समाप्त कर देने वाले हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं उस समय सूर्य भगवान उनके सामने प्रकट हुए, वही हाथ, वही मुख, वही मुकुट। उनका दर्शन करके अदिति उनको प्रणाम की। सूर्य ने कहा, हे देवी, आपने किस उद्देश्य से मेरी स्तुति की है? तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। तो कहा कि हे सूर्यदेव, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूं कि सृष्टि के लिए देव शक्ति का बढ़ना बहुत जरूरी है। यद्यपि देवता मेरे बेटा है और दानव और दैत्य राक्षस ये भी मेरे बहनों के बेटा है, तो मेरे ही बेटा है, परंतु इनके द्वारा सृष्टि की इतनी उपयोगिता नहीं है। मेरे पुत्रों के द्वारा सृष्टि के धर्म का स्वाभाविक पालन होता है और इनके द्वारा स्वाभाविक ही अधर्म की वृद्धि होती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे पुत्रों के हाथ में त्रिभुवन का राज्य होगा तो प्राणी मात्र सुखी हो जाएंगे, और यदि दिति के पुत्रों के दैत्यों के हाथ में होगा तो महान कष्ट होगा। तो आप देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का संहार कर दीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं भी यही देख रहा था देवी, अब तुमने वरदान मांग लिया तो अब मेरे पास देवताओं का पक्ष लेने का एक मौका मिल गया। देख तो मैं यही रहा था कि क्या करूं कैसे करूं, पर कुछ समझ में नहीं, अब मेरे समझ में आ गया। तो मैं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा, तुम कोई चिंता मत करो। अच्छी बात। दिति बड़ी प्रसन्न हो गई और उस समय सूर्य के तो अनंत किरणें, एक सुषुम्ना नाम की किरण थी उसको उन्होंने गर्भ में भेज दिया सूर्य भगवान ने। और वो गर्भ में आकर विराजमान हो गई सुषुम्ना नाम की किरण, और उस शक्ति से वो चांद्रायण व्रत वगैरह सब किया करती थी। एक दिन कश्यप जी ने कहा कि तुम रोज रोज ये उपवास करते हो, जब उधर में गर्भ में कोई प्राणी रहता है तो उपवास करने पर उस गर्भ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, तुम अपने बच्चे को मारोगे क्या? तो उसने कहा कि नहीं महाराज, ये गर्भ कोई मामूली गर्भ नहीं है, और ये गर्भ ऐसे उपवासों से मर नहीं सकता है। ये गर्भ है तो साक्षात सूर्य भगवान की एक किरण ने आकर के मेरे यहां स्थान ग्रहण किया है। यदि आप उसके दर्शन करना चाहें तो अभी मैं प्रकट करके बता सकती हूं। तो उन्होंने अपने उधर से उसको बाहर निकाल दिया गर्भ को, और वहां सामने एकदम सूर्य जैसा रूप। कश्यप जी भी बड़े आश्चर्य में डूब गए। तो उस समय आकाशवाणी हुई, कश्यप जी आपने कहा था कि इस गर्भ को तुम, इस अंडे को तुम मारोगे, मारितम अंडम, उपवास करके तुम इसको मारोगी क्या? ये जो तुमने शब्द कहा है तो अब इस गर्भस्थ या अब इस बालक का नाम मारतंड होगा, देखना ये तुम्हारे पुत्रों के साथ में कैसा बर्ताव। अब कश्यप जी के तो सारे ही बेटे, देवता भी बेटा है तो दैत्य भी उन्हीं के ही बेटा है, तो दानव भी उनके बेटा है। कहा कि देवताओं को यज्ञ का हिस्सा मिलेगा, और तुम्हारे जो दूसरे बेटा है दानव वगैरह उन सब का ये संहार करेगा। बस इतना कहना हुआ, देवताओं ने ये बात सुनी, देवताओं का तेज बढ़ गया और इधर दानवों का तेज क्षीण हो गया, और देखते 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 सब दानवों का संहार, देवताओं का संहार हो गया और देवताओं का राज्य उनको मिल गया। कौशिक मुनि बोले कि बहुत प्रसन्नता की बात है, और कोई ऐसी महिमा सुनाओ सूर्य भगवान की। अब सुनिए आप खास बात। मार्कंडे जी कहते हैं कि सूर्य की महिमा सुनाता हूं। बहुत पुराने काल की बात है कि दम के पुत्र राज्यवर्धन एक बहुत विख्यात राजा थे। उनके पिता का नाम था दम और उनका खुद का नाम था राज्यवर्धन। बड़े धर्मात्मा, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, राष्ट्र बड़ी उन्नति पर था, गांव के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न थे, किसी प्रकार का कोई उत्पात नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वो सांप बिच्छू तक का भय नहीं, अनावृष्टि का भय नहीं। राजा ने खूब बड़े बड़े यज्ञ किए, खूब बड़े बड़े दान किए, सब प्रकार से वो धर्म के अनुकूल रहता था। ऐसे करते करते उसको 7000 बरस तक उसने शासन किया। इधर उनका विवाह था वो दक्षिण देश के विदुरथ नाम के राजा की कन्या थी मानिनी, उसके साथ विवाह हुआ। वो बड़ी सुंदर और पतिपरायणा स्त्री थी, खूब पति की सेवा करती थी। एक दिन सब राज कर्मचारी वगैरह उपस्थित थे और राज परिवार के लोग भी उपस्थित थे। वह उनके मस्तक में वो तेल लगा रही थी पत्नी, उनके मस्तक में, ध्यान से सुन रही, तेल लगाते लगाते वो रानी के आंखों में आंसू आ गए और ऐसे आंसू आए कि वो तड़ 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 आंसू गिरने लग गए। तो वो आंसू राजा के पीठ पर गिरे, कुछ मस्तक पर भी गिरे। तो राजा ने देखा गरम गरम आंसू, क्या बात है, तुम रोती क्यों हो? तो पहले कुछ बताया नहीं कि यूं ही कि नहीं बताना पड़ेगा, तुम्हारे दुख का कारण तुम मुझे नहीं बताओगी, किसको बताओगी, क्या बात है, क्यों रोई? बहुत कुछ कहा तो उस देवी ने कहा, महाराज मुझे इस बात का दुख हुआ कि आपके इन केशों के अंदर एक पका हुआ सफेद बाल है। सफेद बाल की बात तो मनुष्य अपने अंदर दूसरी कल्पना करने लग जाता है। तो मैंने देखा कि मेरे दुर्भाग्य का चिन्ह है, इसलिए मुझे रोना आ गया। अरे ये तो हंसने का मौका था, तुम्हारे लिए भी हंसने का मौका, मेरे लिए भी हंसने का मौका। सफेद बाल आ गया तो हंसना चाहिए। सब लोगों के सामने राज परिवार और सब लोग सबके सामने हंसते हुए कहा, अरे सुबह शोक की क्या बात, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। शरीरों का जन्म भी होता है, शरीर बढ़ते भी है और बढ़ते 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 उनका रूपांतरण भी होता है, फिर शरीर का क्षय भी होता है और फिर शरीर का नाश भी होता है। इसमें दुख की क्या बात है? दुख तो इस बात का करना चाहिए कि हमने शरीर में कोई अच्छा काम नहीं किया हो तो दुख उठाना चाहिए। देखो मैंने वेदों का अध्ययन किया है, मैंने हजारों यज्ञ किए हैं, मैंने यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दिया है, अब हमारे पुत्र पौत्र आदि बहुत बड़ा परिवार भी हो गया है, पृथ्वी का शासन मैंने धर्म पूर्वक किया है, युद्ध में भी मैंने धर्म को नहीं छोड़ा है, मेरे बाल पक जाए, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए, देह से चला न जाए और फिर अंत में इस देह से प्राण निकल जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जिस खेत से भरपूर खेती मिल गई हो उसके बाद यदि खेत सूखता हो तो धोखे की बात कहां है? तो बड़ा अच्छा है, मैंने तो देखा ही नहीं था, मेरे सिर पर सफेद बाल आ गया, ओहो अब तो मैं वनवास की तैयारी करूंगा, ये तो वनवास का समय है। बाल्यावस्था भी मैंने बहुत अच्छी बिताई, कुमार अवस्था भी मैंने अच्छी तरह से, युवावस्था में मैंने खूब अच्छे काम किए, अब बुढ़ापा आता है तो वानप्रस्थ में जाना ही चाहिए, सब प्रकार के प्रपंचों से मुक्त होकर शांत होकर यहां से जाना चाहिए। और कोई आज मैं पहली बार कर रहा हूं, मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा ही मार्ग अपनाया है और मैं यदि ऐसा करूंगा तो मेरे आने वाले लोग भी ऐसा ही अपनाएंगे, तो तुम्हारे रोने की क्या बात है? चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूं। ये तो पके हुए बाल कहकर तुमने हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रखा, खूब प्रसन्नता हो रही है, ओहो मेरे सफेद बाल आ गए, ओहो अब तो मुझे अपने किए हुए धर्मों को खूब याद करके और ईश्वर भजन के समय को सार्थक करना है, बहुत अच्छी बात। अब सब लोगों ने देखा कि राजा तो राज्य छोड़कर चले जाएंगे, तो सब लोग बोले महाराज आपकी रानी को तो रोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी रानी तो आप जाओगे वन में तो वो भी साथ में चली जाएगी, रोना तो हमारे भाग्य में लिखा है, आप जैसा राजा कहां पड़ा है, आप हमको छोड़कर वन में ले चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपने हमारा किस प्रेम से लालन पालन किया है? आपके चले जाने की बात सुनकर के तो हमारे ऐसा लगता है हमारे प्राण से निकल रहे हैं। आपने 7000 वर्ष तक शासन किया है, परंतु हम उससे अभी तृप्त नहीं हुए हैं। आप जाएंगे तपस्या करने, तो आप विचार करो कि इतनी बड़ी तपस्या से आपको तो फायदा होगा, लेकिन आपकी इतनी बड़ी प्रजा है और ये जब न तो पुण्य में लगेगी और न कोई और काम में लग पाएगी, तो इन सब की जो सेवा है, तो उसके सामने इतने आदमियों का आप भला करेंगे, तपस्या से आप अपना ही भला करेंगे, तो वानप्रस्थ से तपस्या से तो आपको कोई विशेष उन्नति नहीं होगी, उन्नति तो आपको राज्य करने से होगी। राजा ने कहा कि देखो, यदि मैं लंबे समय तक यहां रहूंगा तो एक न एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, तो ये समस्या तो उस समय भी आएगी, और यदि मैं एक अपनी रुकावट पैदा कर दूंगा तो फिर पीछे आने वाले लोग क्या सीखेंगे? अब तक तो मैंने आप लोगों की सेवा की, यदि मैं वन में जाता हूं तो पीछे कितनी मेरी पीढ़ियां चलेगी, उनको भी तो कोई शिक्षा मिलनी चाहिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि 16वीं कला के बराबरी भी आपकी तपस्या नहीं है? ऐसी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरी परंपरा चलेगी। ये वनवास का समय है और मेरा इतना बड़ा ठाट बाट देखकर यमराज के मन में जलन पैदा हो जाएगी, वो मुझे यहां भी नहीं छोड़ेगा और मुझे यहां से ले जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं वानप्रस्थ के अंदर रहकर वहीं पर मैं आगे का रास्ता अपनाऊं। मेरे मस्तक पर जो एक सफेद बाल जो मैंने नहीं देखा है, मेरे रानी ने देखा है, ये सफेद बाल तो वास्तव में मुझे यमराज जी ने कृपा करके सूचना दी है, सावधानी की बात है। अतः मैं अपने राज्य पर अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके वनवास में जाने का निश्चय कर चुका हूं। जब तक यमराज जी के सैनिक मेरे यहां न आ जाए, उससे पहले पहले मैं ये जगह छोड़कर जाना चाहता हूं। अब वन में जाने के लिए ज्योतिषियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, सबको बुलाया कि साहब समय देख के बताओ कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है, 15 दिन बाद जाए कि 20 दिन बाद जाए, या कोई आगे कोई अच्छा मुहूर्त देख के बताओ। अब ज्योतिषियों के मन में राजा के प्रति इतना प्रेम था कि वो कहते हैं हम तो पतड़ा लेकर के बैठते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो दूसरे देश के राजा के यहां से पंडितों को बुलाया, तो उन पंडितों को भी लोगों ने कह दिया कि जी मुहूर्त वूर्त मत बताना, मुहूर्त बताएंगे राजा चले जाएंगे, इसलिए तुम इसको ऐसी टालते रहना, अच्छी बात है। इधर वो मंत्री सेवकर बड़े बड़े ब्राह्मण वगैरह बड़े नागरिक, अब अपने को क्या करना चाहिए? तो सब ब्राह्मणों ने उन्होंने सलाह करके निश्चय किया कि चलो अपने तो कौन सुनेगा, एक ही आकाश में दीप्यमान भगवान सूर्य है और भगवान को तो हम जानते नहीं, भगवान की एक कला ये सूर्य है, सूर्य भगवान से ही प्रार्थना करते हैं एकाग्र होकर के। अब उन्होंने, अब ब्राह्मणों को तो वेद मंत्र याद, वो सूर्य सूक्त बोलने लगे, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आशुव, ऐसे ऐसे मंत्र बोले, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऐसे मंत्र बोलने लगे। वे लोग जैसी अपने टूटी फूटी भाषा में जिनको जैसा भाव था, सूर्य को हाथ जोड़ जोड़ के बोलने लगे, तो उस समय एक सुदामा नाम का गंधर्व आया, कहने लगा कि देखो सुनो सुनो ब्राह्मणों, सुनो भक्तों, आप लोगों को सूर्य की आराधना का जो भाव है उससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो सके, ऐसा काम करके आप यहां से कामरूप पर्वत पर जाओ, वहां सूर्य भगवान का मंदिर है, वहां पर जाकर प्रार्थना करो और वहां जाकर ये बात कहो सूर्य भगवान से, बहुत जल्दी काम बनेगा। तो कहा कि ठीक है, कामरूप पर्वत में गुरु विशाल नाम का जंगल है, वहां पर वे चले गए, वहां सूर्य भगवान का मंदिर था और वहां जाने पर उनको जो है बड़ी प्रसन्नता हुई, स्तुति करने लगे। ब्राह्मणों ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति करी तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, बोलो भाई आप लोग क्या चाहते हो कि हे सूर्य भगवान, आपको नमस्कार है, आप जो है अंधकार का नाश करने वाले हो, तो हमारे जो राजा है इनको आप 10,000 वर्ष और दे दीजिए। कि तथास्तु, तथास्तु कहकर के सूर्य भगवान अंतरित हो गए। अब सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास लौटे, महाराज महाराज बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। राजा ने कहा क्या बात है भाई? बस हम वहां कामरूप पर्वत पर गए थे और वहां गुरु विशाल नाम का वन है, वहां गए थे, वहां जाकर के ब्राह्मणों ने सूर्य भगवान की बड़ी स्तुति करी वेद मंत्रों से, और जैसा हुआ हमने भी थोड़ा बहुत किया, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, हमने आपके लिए 10,000 वर्ष की आयु मांगी, आप बिल्कुल निरोग रहोगे और सारी प्रजा पर आप 10,000 वर्ष तक शासन करते रहोगे, इसलिए अभी आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही, और फिर इधर रानी का, वाह महाराज वाह महाराज बड़ा अच्छा हुआ, मेरे आंसू गिरना सफल हो गया। ये सुनते ही राजा रोने लग गया। अब सब लोग अच्छे, महाराज ये क्या किया? राजा ने कहा कि तुम्हारा रोना अब मेरे अंदर आ गया, प्रजाओं से कहा कि तुम्हारे अंदर का रोना भी मेरे अंदर आ गया, इसलिए आप सब प्रसन्न हो, और पहले आप रोते थे अब मैं रोऊंगा, अब क्या करूं बताओ। कि महाराज ऐसा क्या हो गया? राजा बोले, कल्याणी तुम मृत्यु का अभिनंदन नहीं करती हो, मृत्यु का स्वागत करो। हमारे शास्त्रों में तो अतिथि का स्वागत किया जाता है, मृत्यु आए प्रेम से उसका स्वागत करना चाहिए। तुम्हें पता है इस जीवन के अंदर आनंद ही आनंद है क्या? हर आदमी को देख लो, वो एक दिन भी पूर्ण प्रसन्न नहीं रह सकता, कुछ न कुछ उसके सुख में कमी रहती है। ऐसे मौके पर हम तो तकलीफ उठा रहे हैं और तुम बधाइयां दे रहे हो, और 10,000 बरस तक मैं तो शासन करूंगा, परंतु क्या तुम रहोगी? क्या मेरा बेटे रहेंगे, मेरे पोते रहेंगे, मेरे पड़पोते रहेंगे, मेरे लड़पोते रहेंगे, रहेंगे क्या ये? तुम तो एक के लिए रोते थे और मैं कितनों के लिए रोऊंगा बताओ? कोई विचार नहीं किया तुमने? प्रजाजनों से कहा कि आप लोगों ने भी कोई विचार नहीं किया? आप लोग जीवित रहोगे? सब ने नीचा मुख कर लिया। मुझे कितना अपार दुख का सामना करना पड़ेगा इसको आपने नहीं सुना? आप लोगों ने इस शरीर की नाड़ियों को सुखा सुखा करके इतनी तपस्या की है, वो तो सब आप मर जाओगे। और मेरे एक सफेद बाल को देखकर ये रानी रोई, वो भी मर जाएगी। गोद में खिला खिला करके जिन बच्चों से मैं हंसता था वो भी मर जाएंगे, और आगे मैं यहां पर बैठा तुम सब के लिए रोता रहूंगा, धिक्कार है मेरे को। ये 10,000 वर्ष की आयु का आपने ये दिया, कितनी बड़ी मुझ पर आपत्ति आई है, और तुम कहते हो राजन कल्याण मस्त, आपका कल्याण हो, आपका अभ्युदय हो। अभ्युदय है कि मेरा मरना है? स्त्री ने कहा महाराज इधर हमारा ध्यान ही नहीं गया, हरदम स्वार्थी स्वार्थ स्वार्थी स्वार्थ में पड़े रहने के कारण ये मृत्यु हमको दिखाई नहीं दी। मुझे आपकी मृत्यु दिखाई दी कि आपके बाल सफेद हैं, आप मर जाएंगे और आपके पीछे मैं रोऊंगी बैठी बैठी, मेरा क्या होगा, इतना ही हमारे अंदर स्वार्थ भरा हुआ। लेकिन आपने जो बात कही हमने तो विचार ही नहीं किया। अब महाराज हो गया सो तो हो गया, अब तो सूर्य भगवान ने आपको 10,000 वर्ष की आयु दी है सो तो दी है। तो कहा कि देखो सूर्य भगवान का निरादर नहीं करना चाहता, जितने लोग सूर्य भगवान के आराधना में गए थे वो सब मेरे साथ चलो, और रानी से कहा तुम भी मेरे साथ चलो, और जितने मेरे भाई बंधु मित्रगण जो मुझे यहां जीवित देखना चाहते थे वे सब चले, भृत्यवर्ग तुम पुत्र पौत्र प्रपौत्र मित्र ये सब, और सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान यदि आप मुझे 10,000 वर्ष की आयु देते हैं तो इन सबको भी आप 10,000 वर्ष की आयु दो, और यदि ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरी 10,000 वर्ष की जो आपने आयु दी वो आपको मैं समर्पित करता हूं, आपको अर्पित करता हूं, आप इसे वापिस ले लीजिए। बोलो आप सबको ये स्वीकार है? सबने कहा महाराज आपके दुख आदि को देखकर अब हमें इस बात का ज्ञान हो गया, स्वीकार है कि चलो। सबके साथ राजा गए सूर्य भगवान के वहां पर सब प्रकार के कष्ट सहा उन्होंने, जंगल में कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है तो कभी वायु के झोंके आते हैं, सब प्रकार से कष्ट सहन करके भी 1 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने तपस्या की। भगवान भास्कर देव प्रसन्न हो गए और फिर उनसे पूछा कि आप क्या वरदान चाहते हो? तो फिर राजा ने मांगा कि महाराज पहले तो ये लोग आए थे मेरे लिए आपसे कुछ मांगा, अब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे साथ के अभी वर्तमान के जितने भी हैं सबके 10,000 वर्ष आयु, आप अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है सो तो है ही, इसमें 10,000 वर्ष की आयु और जोड़ दीजिए। सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहा सभी प्रजाजनों से कि देखो संसार की गति को चाहे 10,000 वर्ष भी तुम और वरदान ले लो, परंतु अंत में तो यहां से जाना पड़ेगा, इस बात को याद रखते हुए तुम जीना। जीना वही उत्तम होता है कि जहां पर मृत्यु का स्मरण होता रहता है कि मरना पड़ेगा, तब तो तुम इसमें लिप्त नहीं होगे। मैंने आंख बंद करके तुमको यह वरदान नहीं दिया था कि तुम्हारा राजा 10 वर्ष तक जिएगा बिना सोचे समझे, मुझे मालूम है कि इस राजा के मन के क्या विचार है, इसलिए 10,000 वर्ष तक जियो लेकिन मृत्यु को सामने रख करके जीना, और इस मंदिर में आकर कोई पाठ करेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार ये सूर्य की महिमा एक बताई, दूसरी बातें आगे आएंगी।